नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही शक्तिशाली उद्बोधन पर चर्चा कर रहे हैं। ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, सही अध्यात्म जीवन में आ जाए तो गजब ढा दे। तो आज हम इसी में जो गहरे विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। पूज्य गुरुदेव के हिसाब से सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या, और आजकल जो धर्म के नाम पर हो रहा है उसमें वो क्या विसंगतियां देखते हैं। उन्होंने एक बड़ी रोचक तुलना भी की है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्मा की जो नकली करेंसी थी
हाँ।
और भारत में आज की आध्यात्मिकता की स्थिति, यहीं से शुरू करते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये तुलना मतलब वाकई बहुत विचारणीय है। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बर्मा में उस वक्त जापानी हमले के बाद नकली नोटों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। इतने सारे नोट थे पर उनकी कोई कीमत नहीं थी।
अच्छा,
असली कौन सा नकली कौन सा पहचानना मुश्किल। तो वैसे ही वो इशारा करते हैं कि आज हमारे देश में आध्यात्मिक दिखने वाले लोगों की, साधुओं की संख्या शायद लाखों में है। उन्होंने 56 लाख का जिक्र किया है।
56 लाख, बहुत बड़ी संख्या है ये तो।
हाँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनमें वैसा ही आध्यात्मिक तेज, वैसा प्रभाव है जैसा प्राचीन काल के उन गिने चुने शायद सिर्फ 7 ऋषियों में था जिन्होंने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया था।
ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब सिर्फ संख्या बढ़ जाने से क्या होता है? अगर इतने सारे लोग वाकई आध्यात्मिक होते तो क्या भारत का, हमारे समाज का कायाकल्प नहीं हो जाता?
बिल्कुल,
जैसे वो क्यूबा का उदाहरण देते हैं कि कुछ ही सालों में अशिक्षा मिटा दी, तो फिर ये जो इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है ये समाज निर्माण में क्यों नहीं लग रही? कहाँ जा रही है ये ऊर्जा?
यही मूल प्रश्न पूज्य गुरुदेव उठाते हैं, और इसका जवाब वो देते हैं उपासना और साधना के फर्क को समझाकर। वो कहते हैं कि उपासना मतलब पूजा पाठ, जप, ध्यान, ये सब जरूरी है, ये शरीर की तरह है,
ठीक है,
लेकिन साधना के बिना ये अधूरा है। साधना है आत्मा, प्राण समझिए,
प्राण।
अच्छा हाँ, और साधना का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, साधना है तपश्चर्या, यानी खुद को तपाना, अपनी कमियों पर काम करना, इंद्रिय संयम, सदाचार यानी अच्छा आचरण, आत्मनिरीक्षण,
अपनी कमियों को देखना।
हाँ, देखना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना, अंतःकरण का परिशोधन मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी सफाई, और सबसे अहम, सिर्फ अपने मोक्ष या शांति के लिए नहीं बल्कि लोक मंगल के लिए जीना, दुनिया की भलाई के लिए।
अच्छा,
तो जैसे शरीर का मूल्य है पर प्राण का 1000 गुना ज्यादा है, वैसे ही उपासना से कहीं ज्यादा मूल्य साधना का है।
समझ गया। तो मतलब पूजा पाठ करना ठीक है लेकिन वो सिर्फ बाहरी चीज हुई, अगर अंदर से बदलाव यानी साधना नहीं है।
बिल्कुल, बिना साधना के उपासना एक तरह से खोखली हो सकती है, दिखावा रह सकती है। उन्होंने अपना एक अनुभव बताया है गंगोत्री का, बड़ा मार्मिक है।
हाँ, क्या हुआ था?
वहाँ 2 साधु थे, कई सालों से वहीं रहते थे, मौन धारण किए हुए, एकदम नंगे बदन, मतलब देखने में बड़े तपस्वी लगते थे। लेकिन जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए उनमें झगड़ा हो गया, और बात इतनी बढ़ी कि एक साधु में पत्थर उठाकर दूसरे का सिर फोड़ दिया, खून बहने लगा।
अरे ये क्या, इतने साल की तपस्या, मौन व्रत, गंगा स्नान, और फिर भी इतना क्रोध और लोभ।
पूज्य गुरुदेव भी यही देखकर एकदम हिल गए, उनका विश्वास डगमगा गया कि ये सब करने का फायदा क्या हुआ अगर अंदर का क्रोध, अंदर का लोभ गया ही नहीं।
सही बात है।
तो उनका निष्कर्ष यही था कि उन साधुओं की उपासना तो थी, शायद रोज घंटों भजन करते होंगे, ध्यान करते होंगे, पर वो एकांगी थी। साधना यानी वो जो अंदर की सफाई है वो गायब थी। जैसे वो कहते ना, मैले कपड़े पर या तेल लगे कपड़े पर रंग चढ़ाओ तो चढ़ेगा नहीं ठीक से।
हाँ बिल्कुल,
वैसे ही अगर अंतःकरण मेला है, उसमें स्वार्थ, क्रोध, वासनाएं भरी हैं, तो भक्ति का, उपासना का असली रंग कैसे चढ़ेगा? सच्चा अध्यात्म तो इंसान को चरित्रवान बनाता है, तेजस्वी बनाता है, दूसरों की भलाई करने लायक बनाता है।
तो ये हुई साधना की बात, यानी अंदरूनी शुद्धि। लेकिन फिर उपासना का सही तरीका क्या है? क्या सिर्फ रस्मी निभाना काफी है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव उपासना में रस्मों से कहीं ज्यादा महत्व देते हैं भावना को, भाव को, और समर्पण को। वो ध्यान को उपासना की आत्मा कहते हैं।
ध्यान, मेडिटेशन।
हाँ, ध्यान, मन को एकाग्र करना, चाहे किसी साकार रूप पर जैसे माँ गायत्री का रूप, या उगते सूरज का ध्यान, या फिर निराकार ज्योति पर। लेकिन ध्यान के साथ, या यूं कहें कि ध्यान से भी ज्यादा जरूरी है, समर्पण का भाव।
समर्पण मतलब सरेंडर।
हाँ, पूरा सरेंडर, आत्मा का परमात्मा से वैसा जुड़ाव, वैसा खिंचाव जैसा एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका के लिए होता है। या जैसे पतंगा होता है ना, वो दीपक की लौ पर खुद को मिटा देता है, वैसा भाव। अपना अहंकार, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, सब कुछ ईश्वर के चरणों में रख देना।
ये तो बहुत ऊंची अवस्था है।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने अपने अनुभव भी बताए हैं कि कैसे वो ईश्वर को हर पल अपने साथ महसूस करते थे।
अच्छा, जैसे?
जैसे कभी लगता था कि ईश्वर पायलट बनकर उनका विमान उड़ा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, कभी बॉडीगार्ड बनकर रक्षा कर रहे हैं, कभी दोस्त की तरह साथ लेटे हुए हैं।
वाह, ये तो अद्भुत है।
ये उसी गहरे भाव और समर्पण का परिणाम है। उनका कहना था कि भगवान को इस बात से मतलब नहीं कि आपने कितने चावल चढ़ाए या कितनी माला फेरी, उन्हें तो सच्ची भावना चाहिए, सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण चाहिए। और अगर हमारी भावनाएं, हमारी आसक्ति, हमारा लगाव पैसे में है या घर परिवार में या पद प्रतिष्ठा में अटका हुआ है, तो फिर पूजा में मन लगेगा कैसे?
सही बात है।
तब तो हमारा असली भगवान वही चीज बन जाती है जिसमें हमारी सबसे गहरी आसक्ति है। पूजा तो बस एक रस्म रह जाती है।
तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? पूज्य गुरुदेव का मुख्य संदेश क्या है?
मुख्य संदेश यही है कि सच्चा अध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड का नाम नहीं है। ये दो पहियों वाली गाड़ी है, उपासना और साधना। उपासना मतलब भक्ति, ध्यान, ईश्वर से जुड़ाव, समर्पण। और साधना मतलब निरंतर आत्म सुधार, अपनी इंद्रियों पर संयम, अच्छा आचरण और सेवा।
उपासना और साधना का संतुलन।
बिल्कुल, जब ये दोनों पहिए साथ चलते हैं तभी आध्यात्मिक जीवन की गाड़ी सही दिशा में बढ़ती है।
तभी इंसान अपने जीवन में और समाज में गजब ढा सकता है, मतलब वास्तविक परिवर्तन ला सकता है।
बिना सच्ची भावना और साधना के अकेली उपासना सिर्फ एक विडंबना, एक दिखावा बनकर रह सकती है।
बहुत खूब, तो ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। अच्छा, जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक विचार छोड़ना चाहेंगे।
हाँ, एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की बात सुनकर ये सोचना लाजमी है कि क्या हमने कभी ईमानदारी से जांचा है कि जिसे हम अपना भगवान मान रहे हैं, जिसे हम पूज रहे हैं, या जिसे हम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानकर भाग रहे हैं, कहीं वो हमारी अपनी ही कोई अधूरी इच्छा, कोई वासना या कोई दुनियावी लक्ष्य का ही प्रतिबिंब तो नहीं? हमारा असली समर्पण, हमारी असली आसक्ति आखिर है कहाँ? ये सोचना जरूरी है।
बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।